چلے یہ پرندے ہانس لے اب جواں ہے اڑ چلے یہ پرندے ہانس لے اب جواں ہے نہ رکے گا یہ کارواں دور ہم سے نہیں اب آسمان ہے قدم سے قدم مل چلے آپ ہیں ساتھ میں جب چلے ہے امنگ ہے اللہ ایک دھئی سو نیا
اب تک آپ نے دیکھا کیوں ہم اس سنستھا کو وشوودیالے کہتے ہیں
کیونکہ یہ وشو کی آتماؤں کے لیے ودیالے ہے
کیا برہما کماری جی ایک نیا دھرم ہے
واستو میں ہم اس سنستھا کو کوئی نیا دھرم نہیں کہیں گے پر یہ آدھیاتمک سنستھا ہے واستو میں دھرم کا تو بڑا سندر ارتھ ہوتا ہے دھرم مانا دھارنا جیون میں جو دھارن کرنے یوگی ہے وہی دھرم ہے
کیا ہم جان سکتے ہیں کہ اس سنستھا کہاں سے اتنا دھن جٹاتی ہے کہ سبھی کارکرم نشلک روپ سے آیوجت کیے جاتے ہیں
جو بھی اس ایشوری وشو ودیالے میں آتے ہیں ہر ایک کو یہی لکش ملتا ہے کہ ہم کو اپنے تن من دھن سے سیوا کرنی
آپ کی سنستھا کیول اپنے لیے ہی کام کرتی ہے سماج کے لیے کچھ بھی نہیں کرتی
واستو میں ہم سماج کے لیے ہی تو کر رہے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ آج جو دنیا میں غریبی ہے وہ دھن کی غریبی نہیں ہے لیکن چرتر کی غریبی ہے تو انسان کے چرتر کا اتھان ہو یہی ہماری سنستھا چاہتی ہے تو ہم یہ کاریہ کرتے ہیں کہ ہر ایک کے چرتر نرمان کو ہم مہتو دیتے ہیں
میں نے سنا ہے نا کہ وہاں پہ ہپنوٹائز یا پھر کچھ جادو ٹائپ میں ہوتا ہے
یہ جادو کوئی اس پرکار سے نہیں ہے کہ ہم کسی پر کچھ جادو کرتے یا کچھ چمتکار کرتے ہیں یہ تو گیان کا جادو ہے آتما کی جو جنم جنم کی پیاس ہے وہ بجھ جاتی ہے تو اس لیے وہ جیسے ایک چمتکار سا ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو اس روپ سے نہیں دیکھتے لیکن ایک باہیہ روپ ان شبدوں کو کہہ کر کے بتاتے ہیں
یہ آتما آخر کیا ہے
میں واستو میں ایک ستھائی ستیہ ستا ہوں چیتنیہ ستا ہوں کیونکہ یہ جو میں شبد ہے یہ چیتنا کا پرتیک ہے ہم یہ کیوں نہیں محسوس کر پاتے کیونکہ یہ جو شریر ہے
ہاں جی
دکھائی دے رہا ہے اور چیتن آتما میں بولنے والی دکھائی نہیں دے رہی
تو آتما کی کاریہ پرنالی کیا ہے
من ارتھات سوچ بدھی ارتھات نرنے انالیسس ڈسکریمنیشن اور میموری ان تینوں چیزوں کا ہونا ہی آتما کا ہونا ہے آتما کا فنکشن کرنا ہے تو جب یہ تینوں چیزیں نہیں ہو رہی ہیں تو آتما شریر میں نہیں ہے
مرتیو کے بعد آتما استتو میں رہتی ہے یا پھر مٹ جاتی ہے
آتما جو ہے شریر کے آنے سے پہلے بھی ہے اور شریر کے جانے کے بعد بھی ہے
میرا پرشن ہے کہ انسان برے کرم کرنے سے کیا اگلے جنم میں کتا بلی بنتا ہے
کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو منشی یونی میں تو پھر دکھ ہونے ہی نہیں چاہیے تھے نا منشی یونی تو صرف پھر کرم کرنے کے لیے ہونی چاہیے تھی اور بھوگنے کے لیے پشو یونی
لیکن کتنی بار یہ آتما جنم لیتی ہے منشی کا
پرماتما کے مہاواکیہ کے آدھار سے کہ منشی آتما 84 جنم لیتی ہے
آخر پرماتما کون ہیں کہاں رہتے ہیں کیا ان کا مانوی سرشٹی پر کوئی پارٹ ہے
جب اتنی مت متانتر ہے تو ہمارے پاس بھی ایک کسوٹی ہونا ضروری ہے کہ جس پر ہم اپنی مت کو کس کر دیکھیں
جی
صحیح ہے یا نہیں ہے اور وہ کسوٹی پانچ باتیں ہیں پہلی کسوٹی کہ ایشور اس کو کہا جا سکتا ہے کہ جو سرو دھرم مانیہ ہو दूसरी कि वो सर्वोच्च शक्ति है, तीसरा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्वोपरि हो, चौथा परमात्मा उसको कहेंगे जो पर होते हुए भी सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता, और पांचवा परमेश्वर उसको कहेंगे जो सर्व गुणों में अनंत हो, सर्वशक्तिमान हो।
तो फिर आखिरकार वे कहां बसते हैं?
पांच तत्वों की दुनिया से पार
जी,
ब्रह्म महतत्व, जहां वो प्रकाश स्वरूप परमात्मा निवास करते हैं।
तो मानवीय सृष्टि पर कब आते हैं?
परमात्मा इस संसार में घोर अधर्म के समय पर आते हैं।
तो कैसे अवतरण होता है दीदी उनका?
परमात्मा इस संसार में जब अवतरित होते हैं तो वृद्ध अनुभवी तन का आधार लेते हैं और उसको नाम देते हैं ब्रह्मा।
परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को ही क्यों चुना?
कौन पात्र आत्मा है ये परमात्मा जानता है।
लेकिन आप लोग मंदिरों में पूजा पाठ करते हुए या व्रत उपवास करते हुए नहीं दिखाई देते?
ऊपर निवास करने वाले परमात्मा के नजदीक हमारी बुद्धि का वास रहे,
क्या बात,
ये है उपवास। कहने का भावार्थ, चाहे पूजा पाठ व्रत उपवास, ये सब के पीछे भाव यही है कि हम मन को परमात्मा में एकाग्र करें, परमात्मा को याद करें।
क्या संस्था इस बात में यकीन रखती है कि गंगा में स्नान करने से वाकई में पाप धुल जाते हैं?
आज अगर गंगा में स्नान करने से लोग पतित से पावन हो जाते हो
जी,
फिर तो मैं कहती हूँ सारे क्रिमिनलों को ले जाकर के स्नान करा देना चाहिए। भावार्थ ये कि जो पानी आत्मा को स्पर्श भी नहीं करता है
जी,
वो आत्मा के मैल को धोएगा कैसे
जी?
तो ज्ञान गंगा की बात है, पानी के गंगा की बात नहीं।
तो ये राजयोग क्या है? क्या ये बाकी योगों से अलग है?
योग का मतलब ही है परमात्मा से अपने मन को, संकल्पों को जोड़ना और परमात्मा से सुख शांति प्रेम आनंद की अनुभूति करना।
तो क्या राजयोग का असर मेरे परिवारजनों पर या मेरे संबंधियों पर भी पड़ता है?
अगर मैं सचमुच ही और बहुत अच्छे समय तक पॉजिटिव स्टेज में रहता हूँ तो इसका जो इफेक्ट है रिलेशंस पर जरूर आता है।
समाचार पत्रों के माध्यम से हमें देखने सुनने को मिलता है कि कई संत महात्मा श्रद्धालुओं की श्रद्धा का अनुचित लाभ उठाते हैं, ऐसे समय में आप अपनी संस्था की विश्वसनीयता कैसे सिद्ध करेंगे?
कोई भी संस्था की जो साख है वो लोगों के मन में हम बनी रहती है या टूटती है, उसके दो कारण होते हैं। एक कारण होता है कि आप बोल क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं
जी।
और दूसरा कारण होता है ट्रांसपेरेंसी।
जब भी संस्था में कोई जाते हैं तो उन्हें फिर ब्राह्मण कहकर के संबोधित किया जाता है।
कोई भी संस्था में आता है वो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण या ब्रह्मा कुमार कुमारी
जी,
वो आत्मा ये टाइटल प्राप्त कर सकती है जिसने अपने जीवन में आत्मिक मूल्यों में नीचे नहीं गिरना है, ये संकल्प कर लिया है।
दीदी मैं पुलिस में हूँ, दीदी क्रोध करना बहुत बुरा है, मुझे बहुत बड़ा मालूम है, मगर मेरा पैसा ऐसा है जो मैं क्रोध करना ही पड़ता है।
आध्यात्मिकता हमको ये सिखाती है कि शक्ति आपका गुण है और क्रोध डिफेक्ट है, तो लक्ष्य होना चाहिए शक्तिशाली व्यवहार जिससे कि वो अपनी गलती को समझे और आगे के परिवर्तन के लिए रहम भाव, प्रेम भाव, क्षमा भाव।
शरीर का स्टेमिना बढ़ाने के लिए मैं मांसाहार लेता हूँ।
देखिए, जो मनुष्य का जो शरीर है वो इस तरह की उसकी बनावट है कि हमारे अंदर जो प्रोटीन है और जो पशुओं में जो प्रोटीन है इसमें बहुत विसंगति है। ये जैसे कि वो प्रोटीन हमारे शरीर को सूट नहीं करता है। इसका एक मुख्य कारण यह है कि मनुष्य की जो इंटेस्टाइन है, जिसको अंतड़ी कहते हैं, ये लंबी अंतड़ी वाला है हमारा
जी, जी,
मनुष्य
जी,
का जो शरीर है
जी।
और जो दूसरे जो एनिमल्स है जैसे लायन है, डॉग है, इनकी जो इंटेस्टाइन है ये छोटी है। तो ये जो लंबी अंतड़ी वाला हमारा जो इंटेस्टाइन है, ये कभी भी इस तरह का जो भोजन है मांसाहार उसके लिए उपयुक्त नहीं है।
लहसुन प्याज शाकाहारी है, इनका उपयोगिता भी बहुत है।
लहसुन प्याज शरीर में जाते हैं तो एक केमिकल होता है जिसको कहते हैं सल्फोनिल हाइड्रोक्सिल आयन्स, ये रिलीज होते हैं। अब ये जो आयन्स है, ये जो केमिकल है, इसमें इतनी शक्ति होती है कि हमारे शरीर में एक होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, हर चीज जो हम खाते हैं ब्रेन में नहीं पहुंचती है, तो ये जो केमिकल है ये इस बैरियर को ब्रेक करके ब्रेन में जाता है
जो।
और वहां पर कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करता है और उसके वजह से न्यूरॉन्स को बहुत हानि होती है।
आपके यहाँ आने वाले फॉलोअर्स को गृहस्थ में भी ब्रह्मचर्य अपनाने को कहा जाता है और भाई बहन बना दिया जाता है।
तो ये जो आरोप है जो आपने कहा कि यहाँ बहन भाई बनाते हैं, क्या पति और पत्नी के बीच केवल काम का ही संबंध है? क्या इन दोनों के बीच में और कोई दूसरा संबंध नहीं है? शास्त्रों में तो यहां तक लिखा हुआ है कि स्त्री जो है एक पवित्र नारी, सारे तीर्थ उसके चरणों में है। तो ये जो बात है इसको हमको और गहराई से समझना पड़ेगा कि ये समय चल रहा है भगवान के अवतरण का, इसके लिए पवित्रता की धारणा बहुत 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 आवश्यक है।
पर हम युवाओं को ब्रह्मचर्य के लिए प्रेरित करना ये कहां तक सही है?
15 वर्ष से 35 वर्ष के बीच के ही युवक जो है सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स की लिस्ट में जो है वो यही लोग है
जी।
तो सबसे ज्यादा आवश्यकता भी उन्हीं को है।
ब्रह्मचर्य की धारणा से समाज को, विश्व को क्या लाभ होने वाले हैं?
ब्रह्मचर्य एक ऐसा तप है कि जिसमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक और सबसे मुख्य जो है आध्यात्मिक, तो ये सारे जो फायदे हैं वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है कि जो इसका पालन करता है।
लेकिन बुढ़ापा में हमारा सहारा कौन बनेगा संतान बिना?
अगर हम इसकी और गहराई में जाए तो हमें पता चलेगा कि व्यक्ति का वास्तव में कोई सहारा नहीं है, उसके अपने कर्म ही उसका सहारा है।
अगर किसी दाम्पत्य में कोई एक पर्सन चलता है तो उसे बहुत दिक्कत होती है।
इसका एक सरल सा उत्तर है कि इसमें अगर वो सहमति नहीं है तो इस मार्ग पर अकेले ही चलना पड़ेगा। दूसरा, उसके प्रति शुभ भावना रखना, उसके प्रति रिस्पेक्ट रखना, स्नेह रखना, स्नेह को कम नहीं होने देना है।
ब्रह्मा कुमारी संस्था कहती है कि स्वर्णिम दुनिया आने वाली है, नई दुनिया आने वाली है।
दुनिया में खाली ब्रह्मा कुमारी कह रही है ऐसा नहीं है, दुनिया में और भी महात्माएं कलयुग की स्थिति को देखते हुए ये कहने लगे हैं कि स्वर्णिम दुनिया या सतयुग आने वाला है।
मगर ये अगर आएगा सतयुग तो फिर वो कैसा होगा?
तो वहां प्रकृति भी सतो प्रधान, मनुष्य आत्मा अपनी सात्विक स्थिति में होंगे
जी,
और पशु पक्षी सभी अपने सात्विक सतो प्रधान स्थिति में होंगे।
शास्त्रों में कलयुग को लेकर के कहा गया है कि कलयुग लाखों वर्ष का है और कलयुग तो अभी बच्चा है, मगर आप कहते हैं कि कलयुग खत्म होने वाला है।
परमात्मा ने आकर के जो बताया है कि कलयुग अभी बच्चा नहीं है, थोड़ा सा बचा है।
आपकी संस्था में कहा जाता है कि सृष्टि चक्र की आयु 5000 वर्ष है, क्या आपके पास इसका कोई पुख्ता प्रमाण है?
ब्रह्मा कुमारी जब कहती है उससे ज्यादा, तो धर्मों के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर धर्म ने 5000 की पुष्टि जरूर की है।
मगर हमने ये सुना है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था में वर्तमान समय को संगम युग कहकर के बुलाते हैं, शास्त्रों में चार ही युग वर्णित हैं, तो ये पांचवा युग कहां से आया?
कलयुग जब समाप्त होना है और सतयुग आना है तो उन दोनों को भी कनेक्ट करने वाला एक संधिकाल का पीरियड होता है जिसको हम कहते हैं पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग।
ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित वाधवा, नई सोच नया विश्वास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, हम दम से गए हम दम के लिए, हम दम की कसम हम दम न मिला, इस खंजर इश्क ने कुछ यूं जख्मी किया, मरहम भी गए मरहम न मिला। लेकिन हमारे इस सफर में मरहम भी मिलेगा और हमारी सभी जिज्ञासाओं का समाधान भी प्राप्त होगा। पिछली कड़ी में हमने उषा दीदी जी के साथ विनाश से संबंधित विषय पर चर्चा की जिसे उन्होंने महापरिवर्तन का नाम दिया। आज भी इसी विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम एक बार फिर अपने बीच में आमंत्रित करते हैं वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी जी को।
ओम शांति।
ओम शांति दीदी।
ओम शांति सभी।
दीदी जी, इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है।
थैंक यू
दीदी। पिछले कड़ी में आपने हमें विनाश के बारे में सब कुछ बताया कि कैसे होगा, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये विनाश के बाद कोई जीवित रहेगा इस धरती पर, या क्या फिर इस विनाश से हम बच सकते हैं?
ऐसा है कि जब विनाश होगा, या जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक परिवर्तन है, जब हम परिवर्तन शब्द कहते हैं, माना कोई कंप्लीट विनाश होकर के एकदम दुनिया खत्म हो गई, एकदम प्रलय जलमय जो कहा जाता है वो हो गए और कोई भी इंसान नहीं बचेगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग उसमें से बच भी जाएंगे और जिनके द्वारा एक नई उत्पत्ति होगी और उसके माध्यम से ही नई दुनिया की शुरुआत होगी। जैसे कई बार हम देखते हैं कि कोई ऐसे प्राकृतिक आपदाओं का दृश्य होता है, प्रैक्टिकल दुनिया में भी, उसमें कुछ बच्चे बच जाते हैं।
हाँ जी,
बच्चे बच जाते हैं, इनोसेंट होते हैं, जिनके अंदर कोई प्रकार की विकृति का नॉलेज नहीं है
जी।
और वो जब बच जाते हैं और वो सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनके अंदर से एक नई सोच पैदा होती है और उस नई सोच को वो आगे बढ़ाते हैं और इस तरह से वो एक नींव बनते हैं नई दुनिया की स्थापना के लिए। ठीक इसी तरह इस महापरिवर्तन में भी जो बड़े हैं, जिनके पास अनेक प्रकार के विकृतियों की नॉलेज है, अनेक प्रकार की बुराइयों की नॉलेज है, वो अगर बच गए तो उनके द्वारा जो होगा वो भी हम कई बार दृश्य देखते हैं कि भाई कहीं भूकंप हुआ और लूट मार ऐसी चलती है कि मानवीयता भी नहीं रहती है, कि लोग मरे हुए के ऊपर से भी जैसे गहने उतार लेना, उसी में लगे हुए हैं, तो ये विकृति है। लेकिन जब बच्चे बच जाते हैं तो बच्चे के अंदर कोई विकृति नहीं होती है। तो इसलिए आने वाले समय में भी इस परिवर्तन की प्रक्रिया में कुछ ऐसा ही नजारा होगा कि कुछ बच्चे जो इनोसेंट होंगे, प्योर होंगे
जी,
वो पवित्र फूल बच जाते हैं और ऐसे सारे बच्चे जहां भी होंगे एकत्रित हो जाएंगे और वो एक नई सोच को, एक नए समाज को जन्म देंगी और जहां से फिर सतयुगी नींव आरंभ होगी और वहां से सतयुग आरंभ हो सकता है। तो यही अभी तो ख्याल में आता है कि इस तरह से इस परिवर्तन की प्रक्रिया में आगे नई सतयुगी दुनिया की स्थापना होगी।
जी जी दीदी, और जब हम बात महापरिवर्तन की करते हैं या अध्यात्म की बात करते हैं, तो इसी सफर में हमने जाना है कि हम हैं तो आत्मा ही, और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता है। तो भय को एक तरफ रखकर मुझे लगता है कि इन सारी बातों को अब सकारात्मक रूप से हमें लेना चाहिए।
जी जी।
पर दीदी, जैसा आपने बताया कि इस परिदृश्य में एक ख्याल आता है कि कुछ बच्चे ही बचेंगे, अगर हम में से अगर किसी को बचना हो तो उसका भी क्या कोई उपाय है?
ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वो दृश्य ऐसा होता है कि जो बड़े व्यक्ति बच जाएंगे ना, तो उनके मन में पहले ही एक ख्याल आएगा, एक वैराग आएगा कि जब सबको भगवान ने ले लिया तो मैं क्यों बच गया, उसको जीने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि वो दर्दनाक दृश्य ऐसा होगा कि जिसको देख करके उनके अंदर में भी ये आएगा कि मैं क्यों बच गया। वो अपने आप को कम नसीब समझेगा कि अब ऐसी हालत में मैं बच करके क्या करूं। तो बचना तो कोई चाहेगा ही नहीं ऐसे समय में
जी।
बाकी जैसे मैंने कहा कि हाँ, जो बच्चे बचेंगे
जी,
उनके अंदर वो वैराग्य या वो बातें ही नहीं होंगी, तो वो एक नई शुरुआत करने के लिए सक्षम हो जाएंगे, उनको ईश्वरीय शक्ति प्राप्त होंगी और वो ईश्वरीय शक्ति से ही वो नई दुनिया की शुरुआत करने के लिए नींव बन जाएंगे।
जी दीदी, और आप जब समझा रहे हैं तो ये विवेक भी कहता है कि यदि कोई बड़ा उस सिचुएशन को, उस दृश्य को देखता है, तो वाकई में वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन से जा सकते हैं। और जहां तक बच्चों की बात है, वो बड़ी किसी भी बात को बड़ी आसानी से भुला भी देते हैं, और जब उनसे एक नई सृष्टि की रचना आरंभ होगी तो वो एक पवित्र और विकृति विहीन हो सकती है। दीदी, हमारे बीच में कुछ दर्शक भी हैं, वो अपनी जिज्ञासाएं लिए हमारे बीच में मौजूद हैं, आइए उनसे कुछ प्रश्न ले लेते हैं।
नमस्ते बहन जी, मैं सुनील कुमार दास संबलपुर ओडिशा से आया हूँ। मेरा एक सवाल है कि जब विनाश होगा पापी और जितने दुष्ट लोग वो तो विनाश हो जाएंगे, लेकिन आपके संस्था में भी बहुत तपस्वी हैं, वो भी क्या विनाश हो जाएंगे?
देखो, जैसे हमने कहा कि ये महापरिवर्तन का समय है, महान परिवर्तन में से हर कोई को गुजरना है, सारी दुनिया को गुजरना है, चाहे वो संत महात्मा हो, ब्रह्मा कुमारी के हो, महान आत्माएं कोई भी हो, क्योंकि जब इस महान परिवर्तन के द्वारा प्रकृति का भी परिवर्तन होता है, मनुष्य आत्माओं का भी परिवर्तन होता है, कंप्लीट एक सतोप्रधान सात्विक दुनिया आनी है, सतयुग आना है, तो ये तमोप्रधान प्रकृति का बना हुआ शरीर उस दुनिया में नहीं जा सकता है। और इसीलिए कोई भी व्यक्ति हो, हर कोई को ये तमोप्रधान प्रकृति का बना हुआ शरीर यही छोड़ना पड़ता है और वहां सात्विक प्रकृति का बना हुआ शरीर पुनः लेंगे। तो इसलिए इस परिवर्तन की प्रक्रिया से हर कोई को गुजरना है। हाँ, किसी को पहले, किसी को बाद में, ये हो सकता है कि एक साथ में सब नहीं जाएंगे, लेकिन जाना हरेक को है ही है।
दीदी, एक और दर्शक कुछ जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं, एक सवाल उनका ले लेते हैं।
नमस्ते बहन जी, मेरा नाम राजीव है, मैं त्रिपुरा से आया हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर विनाश होने वाला है तो क्यों ना मैं विनाश से पहले अपना सभी सांसारिक सुखों को भोग लूं?
बेशक भोगिए, भोगने के लिए कोई मना नहीं करता है, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, सुख चार प्रकार के होते हैं, तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख और जन का सुख। आज मनुष्य के पास धन का सुख जरूर होगा, सुख सुविधाएं उससे खरीद लिए होंगे, परंतु बिना श्रेष्ठ कर्म किए वो धन का सुख भोगने में भी परिणाम क्या हो सकता है, दुख की प्राप्ति में ही कहीं ना कहीं वो परिवर्तित हो जाते हैं। कई बार हम देखते हैं माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छे सुख सुविधा के साधन, लेटेस्ट गाड़ी का मॉडल ला करके देंगे, लेटेस्ट साधन ला करके देंगे, लेकिन जहां श्रेष्ठ कर्म नहीं है तो वो ही गाड़ी में बैठ करके शराब पी करके अनैतिकता के साथ में जब वो गाड़ी चलाते हैं तो किस तरह से एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं। इसी तरह आज कई लेटेस्ट गैजेट ले करके आते हैं, लेकिन वो गैजेट यूज करते समय जब श्रेष्ठ कर्म का आचरण ही नहीं है तो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं, और इस तरह वो अंत में परिणाम दुख की प्राप्ति में ही बदल जाता है। तो इसलिए कहा कि आज व्यक्ति भोगना चाहता है, लेकिन जब वो भोगने की क्वालिटी में परिणाम में दुख आता है तो क्या वो दुख को भी स्वीकार करने की मानसिक तैयारी है? इसीलिए इस दुनिया में कोई कितना भी सोच ले कि मैं भोग लूं, बिना श्रेष्ठ कर्म किए भोगना कहीं ना कहीं दुख की प्राप्ति कराएगा। बाकी तो भोगिए, कौन मना करता है, आप ही का है, आपके द्वारा कमाया हुआ है, बेशक भोग सकते हैं, लेकिन एक यही निवेदन रहेगा, श्रेष्ठ कर्म अच्छे संस्कारों के साथ भोगिए तो दुख के परिणाम में वो परिवर्तित ना हो।
जी दीदी, आपने बात बिल्कुल सही बताई कि सुखद भोगना का आधार श्रेष्ठ कर्म ही है। पर एक प्रश्न है मेरे मन में दीदी, जब महापरिवर्तन तय है, हमें इस परिवर्तन से गुजरना ही है, कोई भी नहीं बच सकता, फिर ये बात जानते हुए भी ब्रह्मा कुमारी संस्था का इतना प्रसार क्यों? विदेशों तक ये संस्था जा रही है, हर प्रदेश, हर शहर, हर गांव में सेंटर्स खुल रहे हैं, और अगर हेडक्वार्टर्स की बात की जाए तो वहां पर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है।
ऐसा है कि विनाश जब होना है तब होना ही है, परिवर्तन की प्रक्रिया जिस तरह से चलनी है वो तय है
जी।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मा कुमारी अपने सेवा का कार्य करना छोड़ दे। जिस तरह आज दुनिया में भी डिजास्टर मैनेजमेंट के कोर्सेज होती है,
हाँ जी,
तो डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स करने का मतलब ये नहीं है कि डिजास्टर ही नहीं होगा। डिजास्टर जब होना होगा वो तो होगा ही, लेकिन उस समय की मानसिक तैयारी किस तरह होनी चाहिए या किस तरह साधनों की तैयारी या एक नॉलेज बहुत जरूरी है ताकि उस अनुसार व्यक्ति कार्य कर सके। ठीक इसी तरह इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा भी हमारा मुख्य लक्ष्य है कि मूल्यनिष्ठ शिक्षा देना और संस्कारों का दिव्यकरण करना, श्रेष्ठ कर्म करना सिखाना, यानी एक सही सात्विक जीवन शैली जीना या जीवन जीने की कला सिखाना, ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक मेन एम है
जी।
और इसीलिए हर क्षेत्र के अंदर
जी
अलग अलग प्रभाग जो हमारे बने हुए हैं वो ऐसी मूल्यनिष्ठ शिक्षाएं देने का कार्य कर रहे हैं
जी।
अब ये शिक्षा देने का कार्य रास्ते पर बैठे बैठे तो नहीं कर सकते हैं ना, उसके लिए एक व्यवस्था चाहिए
जी।
और व्यवस्था चाहिए, पहले बहुत कम लोग आते थे ब्रह्मा कुमारी की शिक्षाओं के लिए, तो छोटी व्यवस्था थी। अभी काफी बड़े ग्रुप्स आते हैं तो जरूर है कि व्यवस्था भी वैसी बनानी पड़ेगी। और इस तरह से जब व्यवस्था बनेगी तभी तो अनेक लोगों को हम वो बातों की शिक्षाएं दे सकेंगे कि कैसे अपने जीवन को श्रेष्ठ दिशा की ओर ले जाए, अच्छे कर्म करें और ये पूंजी इकट्ठी करते हुए कैसे अपने जीवन को सफल करें, ये मुख्य लक्ष्य है। और इसीलिए विनाश जब होना होगा, परिवर्तन जब होना होगा तब जरूर होगा
जी।
लेकिन कम से कम मनुष्य उसके पहले स्वयं का सशक्तिकरण मानसिक रूप से आध्यात्मिक रूप से कर ले
जी।
ताकि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम्स जो आते हैं, परिस्थितियां जो आती है, तो उस समय जैसे कई लोगों को रास्ता जब सूझता नहीं है सुसाइड कर लेते हैं, जीवन का अंत कर लेते हैं
जी।
या डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं या कई प्रकार की मानसिक भोगनाएं आ जाती है और उसके शिकार हो जाते हैं। तो आध्यात्मिक सशक्तिकरण जब व्यक्ति कर लेगा तो जरूर है कैसी भी सिचुएशन आए, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन उसको पार करना आसान हो जाएगा। और उसके लिए यह व्यवस्था बनाना स्वाभाविक है।
और दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा भी है कि मरने से पहले जीना ना छोड़ो। हमें सत्य का ज्ञान हो गया है कि आने वाले महापरिवर्तन के दौर से हर एक को गुजरना ही है, पर क्या हम जीना छोड़ देंगे? और अब जब जीना ही है तो क्यों ना श्रेष्ठता के साथ जिएं? सुखद अनुभूतियों के लिए श्रेष्ठ कर्म करना जरूरी है और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए मूल्यनिष्ठ शिक्षा देने का कार्य ही तो ब्रह्मा कुमारी संस्था कर रही है। दीदी, आपने बहुत विस्तार पूर्वक सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। ये प्रश्न अति गुह्य थे, काफी टेढ़े थे, लेकिन सटीक उदाहरणों के माध्यम से, अपनी ओजस्वी वाणी से आपने हम सभी की जिज्ञासाएं शांत की हैं। मैं सभी दर्शकों की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंधकार ने छलना सीखा, छलता आया और छलेगा, किंतु दीप ने जलना सीखा, जलता आया और जलेगा। जी हां दोस्तों, एक जलते हुए दीप की भांति ही, बल्कि मैं तो कहूंगा कि एक आध्यात्मिक दीप स्तंभ बनकर मूल्यनिष्ठ शिक्षाओं के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी संस्था समाज को रोशन कर रही है। इस संस्था के प्रति हमारे मन में कई भ्रांतियां थी, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से इस संस्था के प्रति हमारे मन में एक नई सोच, नया विश्वास जागृत हुआ है। आध्यात्म के पथ पर अब हम निसंकोच अग्रसर हो सकते हैं और ईश्वरीय ज्ञान प्राप्ति बिना किसी दुविधा के प्राप्त भी कर सकते हैं। इसी विश्वास के साथ मैं अमित वाधवा आपसे इजाजत लेता हूं। रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें naisoch.gws@gmail.com या कॉल करें 9414006944 या 9414032365।